क्या है आज का टॉपिक, अभी जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा होने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी जो दो तीन रविवार है इस बीच में, जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले होने वाले जो कुछ छोटे छोटे उत्सव हैं उसी के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो कल तो पांडव निर्जला एकादशी थी और आज सुबह हम लोग बहुत ही आनंद से बीच में पानीहाटी चीरा दही महोत्सव मनाए हैं, और अब आने वाले दो मुख्य उत्सव रथ यात्रा के पहले है स्नान यात्रा और गुंडीचा मार्जन। तो स्नान यात्रा तो गुरुवार को है, गुरुवार को आप लोग सबको आना है, तो स्नान यात्रा के बारे में तभी बताऊंगी। और एक जो उत्सव या सेवा जो हम रथ यात्रा के पहले करते हैं वो है गुंडीचा मार्जन। तो मैंने सोचा आज हम गुंडीचा मार्जन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम चैतन्य चैतामृत में ये लीला आती है, कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ में गुंडीचा मंदिर का जो है मार्जन माने सफाई करते हैं। चैतन्य चैतामृत एक बहुत ही विशेष पुस्तक है, बहुत सारे नए लोग हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कहते थे कि भगवद गीता जो है वो एक ग्रेजुएट स्टडी है भक्तों के लिए, और श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, और चैतन्य चैतामृतम पीएचडी स्टडी है भक्तों के लिए। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है उसके बारे में भगवद गीता में बताया गया है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से कहाँ जाते हैं, क्या है। और भागवतम में बताया गया है कि वो जो भगवान है वो क्या करते हैं, उनकी लीला क्या है। और चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि भगवान क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है। चैतन्य महाप्रभु का रूप ही तो उसके लिए है, उन्होंने भक्त रूप में छाना अवतार में क्यों वो आए, यही तो जानने के लिए कि राधा रानी क्या सोचती है। मुख्य कारण कृष्णदास कविराज ने तीन मुख्य कारण क्या बताए कि भगवान कृष्ण जानना चाहते थे कि राधा रानी क्या सोचती है, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है जब वो मुझे देखती है, और राधा रानी को मुझ में क्या आकर्षित लगता है जिससे वो इतनी मेरे लिए भाव विभोर हो जाती है। तो ये सब जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उन्होंने क्या किया, राधा रानी के जो मन की भाव थी वो हम चैतन्य चैतामृत पढ़ने से हम समझ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा रानी के कंबाइन अवतार है। ये चैतन्य चैतामृत किताब इसीलिए भी विशेष है क्योंकि भक्तों के लिए एक मैनुअल है। भक्त किसे कहते हैं, भक्त क्या सोचते हैं, भक्त क्या बोलते हैं, भक्त कैसे चलते हैं, भक्त परस्पर कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैतन्य चैतामृत से सीख सकते हैं। इसीलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी डूब रहा है पानी के अंदर तो डूबता हुआ आदमी क्या करता है, जितना हो सके सामान को छोड़ देता है, अपने आप को बचाता है। तो बोलते हैं डूबते हुए आदमी को भी ये तीन किताब तो अपने हाथ में रखनी चाहिए, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चैतामृत। लेकिन अगर डूब जा रहा है और हाथ में पकड़ने के लिए जगह कम है तो दो किताब, भागवत और चैतन्य चैतामृत, लेकिन और भी कम है, बस एकदम डूब रहा है तो सिर्फ चैतन्य चैतामृत पकड़ के डूब जाना चाहिए, उतना इस किताब को इम्पोर्टेंस दिया है। और कुछ दिनों पहले मुझे एक विशेष बात पता चली जो मुझे आज तक पता नहीं थी, मैंने बॉम्बई के किसी भक्त से ये बात सुनी और काफ़ी मैं सरप्राइज हो गई। वो प्रभु जी बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले इस्कॉन मंदिर से कुछ भक्त श्रीरंगम गए थे और वहाँ पे रंगनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे भक्त तो जहाँ जाते हैं भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, तो वो कीर्तन वगैरह कर रहे थे तो श्री रंगनाथ जी के जो हेड पुजारी जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी करीबन 100 साल, तो उन्होंने बोला कि ये जो भक्त लोग आए हैं इनमें से इनका हेड कौन है। तो एक प्रभु बोले हाँ मैं हूँ, बताइए। तो बोलते हैं कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तो बताइए। गुरु चैतन्य चरितामृत की जो कमेंट्रीज लिखी है, आप लोग सोचते हो कि आपके गुरुजी श्रील प्रभुपाद ने लिखी, तो हाँ ऑफकोर्स हमारे गुरुजी श्रील प्रभुपाद ने दी है उस पर कमेंट्री, बोलते नहीं ये गलत है, मैं तुमको बताता हूँ किसने लिखी। तो फिर वो पुजारी ने बोला कि मेरे सपने में रंगनाथ जी आए थे और सपनों में उन्होंने कहा, सपने में उन्होंने कहा कि ये जो चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद या तात्पर्य दिया हुआ है वो प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, रंगनाथ जी ने बोला मैंने डिक्टेट किया है, वो मेरा है, वो मैंने उसका अनुवाद दिया है, तुमको उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो वो पुजारी श्रीरंगम से मुंबई आया जुहू मंदिर में, वहाँ पे उसने चैतन्य चरितामृत पुस्तक खरीदी और उसने पूरी पूरी पढ़ी। मैंने जब ये बात सुनी मुझे इतना आनंद लगा कि देखिए कितना प्रभुपाद जी की बुक्स इतनी पावरफुल है। हाँ, इस पूरे परंपरा की जो शक्ति है, भगवान खुद जो है प्रभुपाद जी की किताबें डिक्टेट करते हैं उनको। तो इसीलिए आज हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे और दो दो लाइन पढ़ेंगे, समय का अभाव होने के कारण शायद हम पूरा पूरा ना कंप्लीट कर पाए, पर जितना हम कर सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गणा जय जय वासादि गौर भक्त गणा शक्ति देह करिए ना चैतन्य वर्णना तिदेही करिए ना ची चैतन्य वर्णना। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से सबसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और श्रीवास ठाकुर से, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला बताने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए, वो कह रहे हैं। पूर्व दक्षिणा होई ते प्रभु ये बायला तंड्र मिलित गजपति उत्क्रांतित होइला। यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड दे रहे हैं इस कथा का, कैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए। पहले चैतन्य महाप्रभु पूरी आए थे, उसके बाद फिर वो साउथ इंडियन यात्रा में गए और पूरा दक्षिण भारत की यात्रा करने के बाद वो फिर पूरी आए, और इस दौरान जो पूरी के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, जो बहुत अच्छे भक्त थे, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें मिल नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि तुम राजा हो, राजा माने ऐश्वर्य, पैसा, धन दौलत, माने माया, तो मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहता। और ये प्रताप रुद्र जो भगवान के भक्त है, वो दिन ब दिन उत्सुक हो रहे हैं कि मुझे मिलना है भगवान को। तो यहाँ पे आपको पता है ये महाराज जो प्रताप रुद्र है किन के पुत्र थे? मैं अक्सर ये कहानी बताती हूँ ना, पुरुषोत्तम जाना और पद्मावती के शादी की, नहीं पता नहीं, ठीक है संक्षेप में बताती हूँ, समय हो जाएगा। पूरी के एक राजा थे पुरुषोत्तम जाना, बहुत अच्छे भक्त थे, इतने अच्छे भक्त थे कि कभी राजा होने के बावजूद भी उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा राज्य का विस्तार हो या मेरा राज्य आगे बढ़े, तो हमेशा भजन कीर्तन करते रहते थे। तो एक बार जब रथ यात्रा हुई तो राजा पुरुषोत्तम जाना जो है रथ के सामने झाड़ू दे रहे थे, रथ साफ कर रहे थे, और तभी वहाँ पे काशी के राजा आए थे अपनी बेटी को लेके, और वो पुरुषोत्तम जाना राजा से अपनी बेटी का विवाह देना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये राजा तो जो है रास्ते में झाड़ू लगा रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने राजा को बोला कि मैंने सोचा कि आप तो राजा है लेकिन यहाँ तो आप रास्ता पे झाड़ू लगाते हो, तो ऐसे झाड़ू लगाने वाले के साथ मैं मेरी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो फिर पुरुषोत्तम जाना राजा बोले कि मैं ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ, ये जो झाड़ू लगा रहा हूँ किसकी सवारी आ रही है, जो भगवान है, जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, उनकी सवारी के सामने लगा रहा हूँ। तो काशी के राजा ने बोला, किसने बोला कि ये जगत के नाथ है? जगत के नाथ तो गणपति है, सारे देवताओं भी गणपति की पूजा करते हैं। तो दोनों में वाद विवाद हो गया। तो काशीराज ने बोला, ठीक है चलो दोनों युद्ध करते हैं, जो युद्ध में जीतेगा, अगर मैं जीत गया तो मेरा गणेश आपके जगन्नाथ के सामने बैठेगा, आपके जगन्नाथ को पीछे बैठना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो आपके जगन्नाथ आगे बैठेंगे, मेरा गणपति जो है पीछे बैठेंगे। तो ये दोनों का जो है विवाद हुआ था। और बोला, ठीक है युद्ध मंजूर है। लेकिन जब सैनिक को ये बात बताई कि युद्ध होने वाला है, तो सैनिक लोग एकदम टेंशन में आ गए, क्योंकि उनको सिर्फ करताल बजाना आता था, वो तो तलवार यूज़ करना ही भूल गए। अब तलवार भी रस्ट हो गया था, कितने दिनों से तलवार यूज ही नहीं किया। तो अब सब टेंशन में और सब जो है भजन कर रहे कि जगन्नाथ जी अब आप ही बचाएंगे। फिर हमारे जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ और बलदेव दोनों दो घोड़े लेते हैं, घोड़े पे बैठते हैं और जाते हैं काशीराज के साथ युद्ध करने के लिए। और यहाँ पे ये लोगों को कोई खबर नहीं है। अब जब युद्ध करने जाते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो सीमा होती है, नो मैंस लैंड, जैसे दूसरे राज्य के जाने वाली जो सीमा होती है, उस बीच में कुछ शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे कि पानी पीना है आपको या कोई छाछ वाच बेचते रहते हैं। तो वहाँ पे एक बुढ़िया थी जो वहाँ पे छाछ बेचती थी। तो जब जगन्नाथ बलदेव गए तो सीमा पार उनको जाना था, तो थोड़े देर के लिए रुके वहाँ पे छाछ पी। अब उनको छाछ बहुत अच्छी लगी तो और पीने लगे, तो और पीने लगे, तो जितना भी था उस बुढ़िया के पास में छाछ का स्टॉक सब पी लिया। तो पीने के बाद बुढ़िया ने बोला कि भैया मैंने इतने जन्म जन्म के भूखे नहीं देखे, सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है कर दिया, अब पैसा दे दो। जगन्नाथ जी बोले, पैसा मतलब क्या होता है, हमको तो सब ऐसे ही आके देते, कभी तो कोई पैसा मांगा नहीं, हम तो ऐसे ही बैठते हमारे मंदिर में, सब आके हमको देते, हमने तो किसी ने पैसा नहीं मांगा। बोलते कि ये कहाँ से आए हो आप, कौन से युग से आए हो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। जगन्नाथ जी बोले, देखो पैसा वैसा तो हम नहीं जानते, एक काम कर सकते, हमारे पीछे राजा आ रहे हैं, राजा से मांग लो। तो इसने कहा, गारंटी क्या है, तुम तो भाग दो भाग जाओगे, पैसा कौन देगा इसका। कि जगन्नाथ जी के गले में माला थी, वो बहुत ही दामी माला थी, सब मनी माणिक्य से बनी हुई, डायमंड्स वगैरह से। तो जगन्नाथ जी ने वो माला उठा के दे दी। तो इसने कहा कि कोई सोचेगा कि मैंने कहीं से चोरी की है, आप लिख के दे दो। तो फिर बलदेव जी ने जो है चिट्ठी बनाई राजा को, मेरे प्रिय पुरुषोत्तम जाना महाराज, आपकी सेवा के लिए हम दोनों जो है निकले हैं काशीराज से युद्ध करने के लिए। तो बीच में हमें प्यास लगी थी और हमने इतना इतना जो है छाछ पी है, और आपको इसका बिल जो है पे करना पड़ेगा। तो फिर वो बुढ़िया बोलती है कि भाई हस्ताक्षर लगाओ, साइन करो दोनों। तो फिर दोनों ने साइन किया, जगन्नाथ और बलदेव। और फिर वो तो वहाँ से चले गए, और जब वहाँ जाके उन्होंने काशी राजा के सैनिकों से युद्ध किया, तो वो लोग सब एकदम सरप्राइज कि दो सैनिक में इतना दम है, सबको हरा दिया, तो अगर राजा ही आ जाए अपनी पूरी सेना लेके तो क्या होगा। तो बोला, बस बस अभी युद्ध यहीं बंद करो, हम लोग हार गए, चलो गणपति को लेके चलते हैं। तो फिर वो सब वहाँ से निकल पड़े और पुरी की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे राजा दुखी दुखी भजमान की भजन करते करते बोल रहा है, चलो जगन्नाथ जी के भरोसे चलते हैं युद्ध करने के लिए। तो जब यहाँ पे पहुँच गए इस बुढ़िया के पास, तो अब ये बुढ़िया बोलती है कि राजा रुकिए, आपको जो है हमें पैसा देना है। और फिर वो राजा से जो है पैसा मांगती है और ये चिट्ठी दिखाती है। ये राजा के आँख से आंसू के, स्वामी जगन्नाथ जी मेरे लिए युद्ध करने भी चले गए। तो तब से उस बुढ़िया का नाम पड़ गया माणिक्य। माणिक का हार भगवान ने उसको दिया था, तो उसको बोलते थे माणिक्य। तो फिर राजा ने क्या किया, माणिक्य को बोला, भाई तुमको तो जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन हुए जो हमें भी कभी नहीं हुए। तो आसपास के जितने भी गांव थे, जहां तक नजर जाती थी, राजा ने सारे गांव माणिक्य के नाम पे कर दिए। तो उसके बाद जो है काशी का राजा आता है और फिर पुरुषोत्तम जाना से कहता है कि भैया तुम बहुत पावरफुल हो, ये लो मेरी लड़की, इससे तुम शादी कर लो। फिर वो बोलता है, मैं तो शादी नहीं करूँगा, आपने मुझे झाड़ू वाला कहा था। तो फिर वो अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि भाई इस लड़की को, पद्मावती को, किसी झाड़ू वाले से शादी करवा दो। तो पर मिनिस्टर बुद्धिमान था, तो उसको किसी से शादी नहीं करवाता है, पूरा साल अपने घर में रखता है। और फिर अगले साल जब रथ यात्रा आती है और राजा झाड़ू देते हैं, तब मिनिस्टर जो है, मंत्री उस लड़की को ले आता है, पद्मावती को, और बोलते हैं कि अब आप इससे शादी कर लो, क्योंकि आपने ही कहा था कि किसी झाड़ू वाले से शादी करवाना है, और आज तो आप ही झाड़ू वाले हो, आप रास्ते में झाड़ू दे रहे हो। अब मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई कि जो शुद्ध भक्त, जिसके लिए जगन्नाथ बलदेव खुद लड़ाई करने चले गए सैनिक बन के, ऐसे शुद्ध भक्त का बेटे थे प्रताप रुद्र महाराज। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम राजा हो, राजा से दूर रहना ठीक है, मैं सन्यासी हूँ। कितना पवित्र भक्त है भगवान का। ये सारी लीला है हमें इसमें से कुछ बातें समझाने के लिए। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णदास कविराज कि पुरुषोत्तम झाना के बेटे प्रताप रुद्र जो है बहुत उत्सुक थे भगवान को देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठी लिखी। किनको चिट्ठी लिखी, सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मैं जो है मिलना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वापस चिट्ठी लिखी कि सॉरी आपको तो वो नहीं मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया आपसे नहीं मिलेंगे। प्रभु निकटे आचे यत भक्त गना मोर लागी तन सबरे करी हानि वेदना। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पे प्रताप रुद्र महाराज। वो बोल रहे हैं अच्छा मना कर दिया ना, तो आप ऐसा करिए चैतन्य महाप्रभु के आसपास जो भक्त है ना सबको जाके मेरी ओर से रिक्वेस्ट करिए, मेरा ये चिट्ठी दिखाइए। अगर वो सारे भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु को मेरे बिहाफ पे बोलेंगे तो पक्का भगवान मान जाएंगे। फिर बोल रहे हैं से सब दयालु मोरे हो न सदाया मोर लागी प्रभु पदे करी बेविनाया। बोलते ये भक्त लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बिहाफ पे वो लोग चैतन्य महाप्रभु से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। तान साबर प्रसादे मिले श्री प्रभु र पाए प्रभु कृपा विना मोरा राज्य नहीं भाई। बोल रहे हैं कि भक्तों के कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं, मुझे भक्तों के कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण का दर्शन होगा। और सपोज अगर मुझे भगवान की कृपा नहीं मिली, चैतन्य महाप्रभु के चरण के दर्शन नहीं हुए, तो मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं ये राज्य छोड़ दूंगा। बाद में बोल रहे हैं यदि मोरा कृपा न करीबे गौर हरी राज्य छाड़ी योगी होइबो भिखारी। बहुत अच्छा से धमकी दे रहे हैं, अगर मेरे ऊपर कृपा नहीं किया तो मैं राज्य छोड़ के जोगी बन जाऊंगा या तो एक भिखारी बन जाऊंगा, मैं राज्य नहीं संभालूंगा। फिर बोल रहे हैं भट्टाचार्य पत्र देखी चिंतित होइनु भक्त गना पास गेले से पत्र लायनु। देखो यहाँ पे कितना उल्टा है, राजा बन के रहना, सारे ऐश्वर्यों से आनंद में रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे भक्तों के लिए तो भगवान के बिना सब कुछ बर्डन है, भक्तों के लिए ये तो सारा बर्डन है। तो बोलता है मैं नहीं, मुझे नहीं बनना है राजा। आप देखो भागवत में भी कथा आती है राजा स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत राजा। प्रियव्रत राजा राज्य नहीं करना चाहते थे, प्रियव्रत राजा राज्य नहीं करना चाह रहे थे, वो भाग गए, उनको जाके मना के सब लेके आए हैं उनको मनाने के लिए। राज्य करना ही एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, राज्य कोई करना नहीं चाहता था, सब चाहते थे कि हमें ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति मिले तो हम भगवान की भक्ति कर सके। राजा की जो पदवी पे बैठना वो एंजॉयमेंट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बर्डन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि उनको सटीक सब करना पड़ता था, न्याय करना पड़ता था, सारे सिटीजन्स को रक्षा करनी पड़ती थी। तो अगर यहाँ पे क्यों धमकी दे रहे प्रताप रुद्र महाराज, बोले अगर मैं योगी बन गया या भिखारी बन गया तो फिर ट्रबल हो जाएगा ना, राजा का सीट खाली तो सब समस्या में पड़ जाएंगे। तो बोले मुझे या तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कराइए या तो मैं जो है भिखारी या योगी बन जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। तो भट्टाचार्य सर्वभूमि भट्टाचार्य लेटर देख के चिंता कर रहे कि अब मैं क्या करूं। सवारे मिलिया कहिलो राज विवरना पीछे से पात्री सवारे करैलो दर्शना। सबको जा जाके सर्वभूम भट्टाचार्य चिट्ठी दिखा रहे, अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, चलो सब मिलके जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं और उनको मनाते हैं। सारे भक्त एक एक करके वो लेटर पास कर रहे हैं और सारे पढ़ रहे कि अरे ये तो अब क्या कर सकते, बहुत बड़ा समस्या है। सब कहे प्रभु तन्रे कभू ना मिली बे आमी सब कह यदि दुख से मानी बे। सारे भक्तों लोग का ओपिनियन है हमें नहीं लगता चैतन्य महाप्रभु उनको मिलेंगे, उनसे ये करेंगे, उनको अपॉइंटमेंट देंगे या उनके ऊपर ये करेंगे। लेकिन अगर हम जाके चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। अभी सब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या है। सर्वभौम पटाचार्य एक आइडिया दे रहे हैं, सर्वभौमा कहे सबे चलो एक बार मिलते ना कहिबो राजा व्यवहार। बोल रहे सर्वभौम पटाचार्य बोलते हैं चलो चलो सब मिलके चलते हैं हम लोग। महाप्रभु को ये नहीं बोलेंगे कि आप जाके उनसे मिलिए, हम सिर्फ बोलेंगे देखो प्रताप रुद्र राजा में कितने अच्छे गुण है, उससे उनका गुणगान करेंगे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को अगर लगा वो उसकी पात्रता है तो वो दर्शन देंगे।
ए तो बोली सबे गेला महाप्रभु स्थाने कहिते उन्मुख सबे ना कहे वचने।
बहुत इंटरेस्टिंग बात, सब चले गए ओके ओके चलो चलते हैं, चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास आके सब खड़े रह गए। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबकी बोलती बंद। फिर महाप्रभु पूछ रहे कि आप लोग सब आए हैं कुछ तो बोलना चाह रहे हैं, तो बोलिए क्या बोलने के लिए आए हैं। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु मुंह खोले, एक्चुअली हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कैसे बोले, ऐसे करके धीरे धीरे बोल रहे हैं लेकिन आप शायद हमसे क्रोध हो जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि वो जो राजा है वो बोल रहा है वो योगी बन जाएगा, वो भिखारी बन जाएगा, अब उसका क्या करें हम लोग। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं,
नित्यानंद कहे तोमार चाही निवेदिता ना कहिले रहिते नारी कहिते भय चित्त।
अच्छा, बोल रहे कि मैं बोले बिना भी नहीं रह पा रहा हूँ लेकिन बोलने के लिए भी डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूँ। फिर वो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि हम सब आपसे ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि आपसे जो है ये मिलना चाहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये बात अब और डिस्कस मत करो, हम लोग बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं उसको नहीं मिलूंगा। बोल रहे हैं
तो मा सबार इच्छा ए अमार लाना राजा के मिलह इहान कट के ते गिया।
बोलते हैं कि आप लोग सबका ये डिजायर है कि मुझे ले जाए कटक राजा को देखने के लिए, यहाँ पे यही ट्रांसलेशन दिया है टू टेक मी टू सी द किंग, ये आप लोग सबकी इच्छा है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। और फिर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर मैं जाऊँ उसको मिलूंगा सन्यासी होके, अगर मैं एक राजा को मिलूंगा तो मुझे सारे मेरी निंदा करेंगे कि सन्यासी को एक राजा को नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक छोटी सी बात बोलते हैं ठीक है मैं जाऊँगा अगर मुझे दामोदर परमिशन दे दे। अब ये दामोदर कौन है? दामोदर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दामोदर पंडित की एक आदत थी, वो सब चैतन्य महाप्रभु को टोकते थे ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स सुनने में हमें लगता है कि कोई भगवान को कैसे टोक सकता है, लेकिन प्यार से, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बड़ा मानते थे, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि सन्यासी धर्म क्या है, सन्यासी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को कितना खाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। और प्यार से टोकते हुए दामोदर क्या कहते थे? अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो दुनिया वाले आपको निंदा करेंगे, इसलिए मैं बताता हूँ सन्यासी है आपको ये शोभा देता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं है जो दामोदर कर रहे हैं, क्योंकि दामोदर पंडित जो कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं। भगवान को टोकने की किसी को जरूरत नहीं, वो जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दामोदर पंडित उनको टोक के क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। तो अपराध से बचाने के लिए भगवान उनको टॉन्टिंग से बोल रहे हैं कि जैसे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, अगर दामोदर पंडित हाँ बोले तो मैं जा सकता हूँ। तो दामोदर पंडित शर्मा जाते हैं, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि मेरी गलती कहाँ है। भगवान उनको टॉन्टिंगली बोल रहे हैं कि भाई तुम अगर बताओ, तुमको तो हर चीज का मतलब जैसे कि तुमने ठेका लेके रखा है क्या सच है क्या ठीक है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तुम्हें ही पता है, तो अगर तुम बोल दो तो मैं जाता हूँ उसको मिलने के लिए। कितनी सुंदर बात है भक्ति जीवन में भी, हमारे जीवन में अपनाने वाली बात है। हमें भी सबको टोकने की बहुत आदत होती है ना?
साधारण ऐसे हम बिना कारण ही लोगों को टोकते हैं, कभी कभी टोकने की जरूरत नहीं हो तो भी। मैं बहुत बार देखती हूँ हमारे स्कूल में जैसे बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, स्कूल एडमिशन के लिए, तो माँ बाप बैठे हैं, बच्चा भी बैठा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसे खेलता है, ऐसे खेलता है। अब बिना कारण के माँ बाप जो है उसकी उंगली ऐसे निकालेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं करते, ऐसा बैठो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। एक आदत, हर चीज हर वक्त सबको टोकते रहना। अब वो हाथ ऐसे रखे या ऐसे रखे, खास किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट एक नेचर जो सबसे में सबको टोको, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना। हमारे भक्ति जीवन में भी देखो, हमें नॉर्मली बड़ी बड़ी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन भक्तों के साथ परस्पर ये छोटी बातें हो ही जाती है। हमेशा हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ ना कि माई लाइफ इज़ फॉर करेक्टिंग अदर्स, ये हमारा मंत्र है। एक्चुअली होना चाहिए कि माई लाइफ इज़ फॉर बीइंग करेक्टेड बाय अदर्स, मुझे करेक्ट करो, मेरी गलती कहाँ है। लेकिन हमारा जीवन का फंडा है कि माई लाइफ इज़ फॉर करेक्टिंग अदर्स, सबकी मैं मदद करूँ, तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ गलत हो। बेशक उसने आपको गुरु की पदवी नहीं दी है कि भैया मेरी गलती बताओ, लेकिन हमको बहुत इंटरेस्ट होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज़ हमारे लिए ठीक है, शायद वो दूसरे के लिए अलग तरीके से ठीक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन गलत है, लेकिन हमारी धारणा यह है कि जो मेरे लिए ठीक है वही इसके लिए ठीक होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? मैं समझा पा रही हूँ। कभी कभी दोनों ही ठीक है, जस्ट आपके दृष्टिकोण से आप ठीक है, मेरी दृष्टिकोण से मैं ठीक हूँ। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि सबको मेरी दृष्टिकोण से ही सोचना चाहिए, मेरी दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, तभी वो चीज़ ठीक है ना। अगर मैं आप लोग को पूछूं विशाखापट्टनम में, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए रेड एंड इफ आई स्टॉप एट ग्रीन, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? अगर मैं लाल से शुरू करूं और हरे पे बंद करूं, तो मैं गलत हूं या सही हूं? हाँ, सुनाई नहीं दिया, मैं गलत हूं। लेकिन क्यों? मैंने ये नहीं बोला कि मैं ट्रैफिक लाइट के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैं लाल बत्ती या हरी बत्ती। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मैं लाल से शुरू करूँ और अगर मैं हरे पे बंद करूँ तो क्या मैं गलत हूँ? मैं तरबूजे की बात कर रही हूँ, वाटरमेलन। मैं जब वाटरमेलन खाती हूँ तो मैं लाल वाल होता है ना उससे मैं खाती हूँ, और हरा जब आ जाता तो मैं बंद कर देती हूँ खाना। तो मेरी गलती है क्या? नहीं है। पर आपने अभी सबने मुझे गलत बोल दिया। मैंने बात भी नहीं की थी ट्रैफिक लाइट की, रोड की। मैंने ये भी नहीं बोला था कि मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। अब क्या हो गया? आप भी सही है क्योंकि आप ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे थे, मैं भी सही हूँ क्योंकि मैं तरबूजे की बात कर रही थी। यही होता है हमारा प्रॉब्लम। हमेशा हम चाहते हैं कि दूसरे हम जैसे सोचे वैसे ही सोचे। एक माँ अपने बच्चे को सिखाना चाह रही थी कि शेयरिंग क्या होता है। तो अब बच्चे के हाथ में दो सेब थे, तो माँ ने बोला देखो बेटा शेयरिंग करना चाहिए, यू हैव टू लर्न हाउ टू शेयर। तो तुम्हारे पास में दो एप्पल है, दो सेब है, तो अब तुम मुझे एक दे दो। जैसे ही माँ ने कहा कि तुम मुझे एक दे दो, इमीडिएटली वो लड़की ने क्या किया, ये एप्पल भी बाइट किया, वो एप्पल भी बाइट कर दिया। अब उसकी माँ को बहुत दुख लगा, दो दो थे हाथ में, इमीडिएटली दोनों बाइट किए। अब माँ ने लगा कि मैं इसको सिखाऊँ तो कैसे सिखाऊँ शेयरिंग। अब माँ रेडी हो गई उसको डांटने के लिए, अभी डांटने ही वाली थी, इमीडिएटली वो लड़की ने बोला माँ ये ज्यादा मीठा है, ये आप खाओ, ये ज्यादा मीठा है, ये आप खाओ। अब क्या हुआ? कंप्लीट परसेप्शन ही अलग हो गया। उसको लगा इसने दोनों खा लिए सेब, लेकिन इसका सिर्फ देखना था कौन सा ज्यादा मीठा है, मैं माँ को वो दूंगी। अब हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां होती है वैसे ही होती है। हम सोचते मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, ये गलत है, लेकिन तुमने उसके दुनिया में जाग के देखा ही नहीं, शायद वो भी सही है। बहुत बार भक्त मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि माता जी आपके साथ डील करने में एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आपको कुछ भी बोलो आप हाँ बोल देती है, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप कभी ना क्यों नहीं बोलती? माता जी ये फूल ऐसा ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं इसको ऐसा लगाए तो ठीक है, हाँ ठीक है। आप क्यों नहीं बोलती कुछ के ऐसा नहीं इसको ऐसा लगाओ, ऐसा नहीं इसको ऐसा करो, क्यों नहीं बोलती? क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो बोलना चाहिए। तो मैं इसका सीक्रेट आपको बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं बोलती, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इस फूल को ऐसा लगाया है तो ज़रूर उसने अपनी दृष्टिकोण से सोच के ही लगाया होगा। अब छोटे से फूल को यहाँ से यहाँ लगाने के लिए दसों जने के दृष्टिकोण की ज़रूरत है क्या? अब उसने सोच के लगाया है तो बस लगाया, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब उस पर फिर मैं अपना ओपिनियन, इसको ऐसा नहीं ऐसा लगाओ, फिर क्या होगा? सपोज मैंने दे दिया ओपिनियन, क्योंकि आप लोगों को बहुत शौक है, देती क्यों नहीं माता जी, कुछ तो बोलो, ये ड्रेस अच्छा है तो अच्छा है, ये लगाया अच्छा है तो अच्छा है, क्यों, कुछ तो बोलो। बोलने से क्या होगा मैं बताती हूँ। अगर आपने बोल दिया ये फूल ऐसा लगाए, मैंने कह दिया नहीं ऐसा नहीं, इस पे थोड़ा गुलाब लगाते ना तो अच्छा लगता, फिर क्या होता आपका रेस्पॉन्स? फिर आप बोलेंगे माता जी गुलाब ही लगाना था, लेकिन गुलाब तो सुबह मिला नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा खर गया था, इसको ऐसा लगाने से ऐसा। सारा एक्सप्लेनेशन मुझे सुनना पड़ेगा, मेरी 5 मिनट नष्ट हो जाए। इसलिए मुझे सेफ लगता है कि आपने जैसा लगाया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मेरा समय बच गया, उस 5 मिनट में भगवान का नाम ले सकते। जब तक कि वो कोई बड़ी बात ना हो जहाँ पे मुझे आपको टोकना ही पड़ेगा, गलती हो रही है या आपके भक्ति जीवन में उससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, नहीं तो मेरा ओपिनियन मेरे पास, आपका ओपिनियन आपके पास, आपको जो ठीक लगे आप करो। छोटी छोटी बातों में अगर हम समय नष्ट ही करते रहे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, कितना समय नष्ट होता है। और हमें पता भी नहीं है दूसरा पर्सन किस दृष्टिकोण से देख रहा है, उसको वहां से शायद अच्छा लग रहा है, आपको इस साइड से वो गलत लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो चैतन्य महाप्रभु अभी दामोदर पंडित को बोल रहे हैं कि भैया तुम बोलो तो मैं करूँ, मतलब उसको चिढ़ा रहे हैं कि तुम तो मुझे हर चीज में टोकते हो, तो तुम बता दो तो मैं जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में दामोदर पंडित बोलते हैं, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो भगवान है, आप जैसा करना चाहते हैं आप करिए। तो उसके बाद में नित्यानंद प्रभु एक सॉल्यूशन देते हैं, बोलते हैं ऐसा करते हैं, राजा भी नहीं आएगा आपको मिलने के लिए, आप भी मत जाओ राजा के पास, एक काम करो, आपका जो ऊपर का कपड़ा है ना उत्तरी, वो दे दीजिए आप राजा को, तो वो भी खुश कि आपका कुछ उसको आशीर्वाद मिला। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, आप लोग सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप लोग ये मानते हो कि ये करना ठीक होगा तो ठीक होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया, अब वो बहुत खुश हो गए राजा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो उत्तरी उनको मिला उसको ही वो पूजा करने लगे भगवान के जैसे, और उसकी जो पूजा वजह सेवा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, रामानंद राय जो मद्रास के गवर्नर थे, वो उनकी दक्षिण भारत में जो सेवा वगैरह थी वो कंप्लीट करके पुरी आ गए, और फिर पुरी आके प्रताप रुद्र महाराज से बोले कि मुझे अगर आप अपनी सेवा से छुट्टी दे दो, क्योंकि वो राजा के मंत्री थे, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का फुल टाइम सेवा में लग जाता हूँ। तो इमिडिएटली राजा जो है मान गए और रामानंद राय को छुट्टी दे दी। लेकिन उन्होंने रामानंद राय को रिक्वेस्ट किया कि आप भी एक बार रिक्वेस्ट करो ना चैतन्य महाप्रभु से, मुझे दर्शन देने के लिए बोलो। तो फिर रामानंद राय जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप एक बार जो है इनको दर्शन दे दो। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सारे अभी भी तर्क चल रहा है। नित्यानंद प्रभु एक बहुत इम्पोर्टेंट तर्क देते हैं, यज्ञी का ब्राह्मणी सब ताहते प्रमाणा, कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी ले का प्राणा। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं जिस तरह से वो ब्राह्मण की पत्नियां थी ना जो भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मण ने उनको रोक दिया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए, अगर इस तरह से ये राजा प्राण त्याग कर देता है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आप तो मानने वाले हो नहीं, ऐसा करके जो है चैतन्य महाप्रभु को उकसा रहे कि आप मान जाइए। फिर रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, रामानंद प्रभु पाया कोइलो निवेदना, एक बार प्रताप रुद्रे देखाओ चरणा, राजा र मिलने भिक्षुक केर दुई लोक नाश, पर लोक रहु लोके कर उपहास। फिर से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, अगर मैं सन्यासी होके जाके राजा को मिला सारे उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तुम समझने की कोशिश करो। राय कहे को तो पापीरा करिया चे आव्यहती, ईश्वर सेवक तोमार भक्त गजपति। राय रामानंद बोल रहे हैं, आपने आज तक कितने पापी लोगों का उद्धार किया जो आपके भक्त नहीं थे, लेकिन ये गजपति राजा तो आपका भक्त है, फिर उसको आप ऐसा क्यों? तड़पा रहे हो, सही बात है ना। जगाई मधाई जैसे लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार करवा दिया। रास्ता में जो मिलता, वो मांस खाने वाला हो जैसा हो, सबको कृष्ण भक्ति दे दी। और ये गजपति महाराज तो शुद्ध भक्त के बेटे हैं और खुद भी शुद्ध भक्त है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें दर्शन देने के लिए कितना तड़पा रहे, इसके द्वारा रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके द्वारा रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको दर्शन नहीं दे रहे। क्या रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और भी जब उसका सेपरेशन, जब उसका विरह ज्यादा बढ़ेगा, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु को देखेगा तो उसका आनंद भी उतना ज्यादा ही होगा। और विरह में क्या होता है, भक्ति बढ़ती है, विरह में भक्ति बढ़ती है। रामानंद राय बोलते हैं कि भाई ना, आप इतने पापियों का उद्धार किया तो ये तो आपका भक्त है। तो मैं बता रही थी कि विरह में प्यार बढ़ता है, तो जानबूझ के जो है ठाकुर जी ऐसा कर रहे हैं, उसको विरह दे रहे हैं, तो उसको और भी भगवान को देखने की लालसा बढ़ रही है। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने कपड़ा भेज दिया था, अभी रामानंद राय के रिक्वेस्ट पे अब एक सॉल्यूशन पे आ गए। मतलब उन्होंने, रामानंद राय ने बोला ठीक है, एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, आप उनको दर्शन मत दीजिए, कम से कम उसके बेटे को दर्शन दीजिए। तो बेटे को मिलना या बाप को मिलना वो सेम होता है, तो आप प्रताप रुद्र के जो बेटे हैं उसको दर्शन दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु मान गए, बोला ठीक है उसके बेटे को लेके आओ। अब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु मान गए तो प्रताप रुद्र को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तबे राय यही सब राजा रे कहिला, प्रभुर आज्ञा ये तन्र पुत्र लाना एला। बोलता ठीक है आपका बेटा को लेके आ जाओ, मान गए आप नहीं कर सकते दर्शन, लेकिन आपका बेटा कर सकता है। जब उसका बेटा आता है चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, वो देखने में थोड़ा सा काला है, श्याम रंग का है, और वो भी एक पीताम्बरी, मतलब जो है हल्दी रंग का, मोल्टन गोल्डन कलर का धोती वगैरह पहन के आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उसको देखते हैं तो उनको भगवान कृष्ण की याद आ जाती है, और वो इमीडिएटली जो है प्रताप रुद्र के बेटे को आलिंगन कर लेते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बोलते ये जब भी आएगा और जब भी मुझे मिलना चाहे उसको अंदर भेज दो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृतार्थ होई लीनो आमी इन्हार दर्शने, तो बोली पुना तारे कैलो आलिंगने। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे इसका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, और ऐसा बोल बोल के बार बार उसको क्या कर रहे है, आलिंगन कर रहे है। क्यों कर रहे ऐसा महाप्रभु? भक्तों के लिए तो भगवान का विशेष प्रेम होता ही है, और प्रेम तो एक्चुअली प्रताप रुद्र पे उबर उबर के आ रहा है, लेकिन ये सारा दिखावा है, उसको नहीं मिलना है, वो राजा है। अब इतना प्यार उस पे आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसके बेटे को आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि उनको देना चाहते हैं। ये सब बाहरी एक्टिंग है कि नहीं नहीं वो राजा है, मैं सन्यासी हूं, हम नहीं मिल सकते हैं। तवे महाप्रभु तन रे धैर्य करेला, नित्याशी अमय मिला ए आज्ञा दिला। बोले इसको बोलो रोज आके मुझे मिलने के लिए। फिर जब रामानंद राय ये बात बताते हैं, महाराज प्रताप रुद्र को बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब उनका बेटा घर आता है तो वो भी अपने बेटे को जो है आलिंगन करते हैं, कि इसी शरीर को भगवान ने आलिंगन किया है। और जब उनका बेटा चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करता है तो वो भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति उसमें जो है ट्रांसफर हो जाती है। और जब प्रताप रुद्र महाराज अपने बेटे को आलिंगन करते हैं तो उनमें भी भक्ति और भी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ तक बात हो गई, लेकिन अभी तक चैतन्य महाप्रभु जो है प्रताप रुद्र महाराज से मिले नहीं है। अब उनका बेटा आता है, उनसे मिलता है। अब यहाँ से कथा शुरू होती है गुंडीचा मार्जन की। अब चैतन्य महाप्रभु जो है तीन जने को बुलाते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसमें से तीन जन पासे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। तीन जने को चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, काशी मिश्र को, सर्वभौम भट्टाचार्य को और मंदिर के सुप्रिटेंडेंट को। तीनों को बुलाते हैं, बोलते हैं मुझे आपसे काम है। तो बोलते हैं कहिए महाप्रभु क्या चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, स्पेशली मैंने ये श्लोक इसलिए पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ जोड़ के बोलते कि मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। क्या सेवा चाहिए आपको? तो मैं गुंडीचा मंदिर जहाँ पे जगन्नाथ जी रहेंगे मैं उसका मार्जन करना चाहता हूँ, उसकी सफाई करना चाहता हूँ। ये गुंडीचा मार्जन क्या है, गुंडीचा मंदिर क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो भगवान को जो श्री मंदिर से लेके जाते हैं और फिर गुंडीचा मंदिर में 7 दिन भगवान रहते हैं, तो पूरा साल जो है वो गुंडीचा मंदिर उपयोग नहीं होता है, तो काफ़ी धूल मट्टी जम जाती है, तो 7 दिन भगवान वहाँ रहने वाले हैं, तो इसलिए रथ यात्रा के पहले उसकी साफ सफाई होती है और उसके बाद में भगवान वहाँ पे 7 दिन रहते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे सेवा चाहिए। कितनी सुंदर बात, जैसे हम लोग तो सेवा से भागते हैं, हाथ जोड़ के पूछना तो दूर की बात है, और अगर हम कभी कुछ सेवा करते भी है तो दूसरों को दिखाने के लिए या तो दूसरों को समझाने के लिए कि कैसे करना चाहिए, देखो ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, मैं दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर से हाथ जोड़ के जो है सेवा को ले रहे हैं, बहुत सुंदर बात। उसके बाद में ये लोग शॉक हो गए उसका बात सुन के, क्या सेवा चाहिए आपको, आप मंदिर धोएंगे वो आपको शोभा नहीं देता है, ये लोग बोल रहे हैं अभी। परिचा कहे अमी सब सेवक तुम्हारा, ये तुम्हारा इच्छा से ही कर्तव्य हमारा। आपको कैसा चाहिए मंदिर क्लीन, हम वैसा ही करेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं, आप बता दो कि ऐसा ऐसा करना है, हम वैसे वैसे साफ कर देंगे, ठीक है, नहीं तो आप बैठो, आपको बताओ, हम इतने सारे सेवक हैं, राजा के तो कितने सेवक होते हैं, बहुत सारे हम सेवक हैं, आप जैसे बताओ वैसे करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, मान नहीं रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भी मान नहीं रहे, हाथ जोड़ के बोल रहे कि मैं आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये सेवा दे दो, मैं और मेरे जो पार्षद मेरे जो भक्त लोग हैं हम सब मिलके ये सेवा करेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा रिक्वेस्ट करने लगे तब इमीडिएटली जो मंदिर के सुपरिटेंडेंट थे बोले बस बस आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, ठीक है आप करेंगे करिए, आप जो आदेश दे वही हमें पालन करना है, क्योंकि राजा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है प्रताप रुद्र महाराज का कि महाप्रभु जो बोले वो ही करना है, तो ठीक है आप जैसे बोलो हम वैसे ही करेंगे, ये भी शायद आपकी एक लीला है, वो बोलते हैं किंतु घाट समर जाने बहुत चाहिया, आज्ञा देह आज सभी इहा आने दिया। बोला बहुत अच्छा आप साफ करेंगे, लेकिन साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए, पानी के जो मटके होते हैं, मट्टी के जो मटके होते हैं पानी भरने के लिए, वो सब भी आपको चाहिए, तो जरा आप मुझे आज्ञा करिए, मैं अभी का अभी सब आज का आज सब लाके रख देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु हाँ बोलते हैं, तो इमीडिएटली वो क्या करता है, नूतन एक सट घट सत समनर जानी पाड़ी च आनिया दिलो प्रभु इच्छा जानी। इमीडिएटली 100 झाड़ू और 100 माटी के कुंडे नए ब्रांड न्यू लेके वो फटाफट आ गया और सब चैतन्य महाप्रभु के पास में हैंड ओवर कर दिया। अब क्या हुआ, दूसरा दिन सुबह सब एकदम नहा धो के रेडी, चैतन्य महाप्रभु ने बोला सबको तुम लोग सब आ जाओ गुंडीचा मंदिर के पास। क्या है ये गुंडीचा मंदिर, महाराज इंद्रद्युम्न की कहानी तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे उनकी भक्ति के द्वारा जगन्नाथ जी का आविर्भाव होता है। तो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी का नाम है गुंडीचा, तो जब रथ यात्रा होती है तो उनकी भी बहुत इच्छा थी कि कभी मेरे घर में आके जगन्नाथ जी रहे, तो इसीलिए जो 7 दिन जहाँ पे जगन्नाथ जी रहते हैं उसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं, क्योंकि महाराज इंद्रद्युम्न ने स्पेशली अपनी पत्नी के कहने पे ये बनाया था गुंडीचा घर जहाँ पे भगवान 7 दिन रहते हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने के लिए सारे भक्त आ गए एकदम रेडी। अब क्या हुआ, श्री हस्ते दिलो सबारे एक अमर जनी सब गाना लोयना प्रभु चालीला पनी। सब एकदम रेडी लाइन में खड़े रह गए। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा चंदन लेके जितने लोग भी सेवा करने आए थे सबके सिर पे चंदन लगाया, और चंदन लगाने के बाद क्या किया, सबके हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया कि चलो शुरू करो काम। देखो यहाँ भी एक बहुत सुंदर समझने वाली बात है, जो भगवान की सेवा करने वाले हैं या भगवान की सेवा करते हैं उनको भी महाप्रभु कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कि भगवान की सेवा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जो भगवान की सेवा करते हैं वो पूजनीय है। इसलिए आप देखो तो श्री वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान की सेवा करने के लिए मंदिर के भीतर जाते हैं, अगर आप उन पुजारियों का हाथ देखो तो डायमंड की अंगूठी, सोने की अंगूठी, ये अंगूठी, वो अंगूठी, चेन वेन सब पहने हैं ना। आप देखे कभी श्री वैष्णव पुजारी लोग इतना कुछ पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? मतलब भगवान की पूजा करने के लिए जो अंदर जाएगा पहले उसका श्रृंगार करते हैं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने यही किया ना, जो सेवा करने के लिए जा रहे पहले उनका श्रृंगार कर रहे, उनको चंदन लगा रहे, उनको सब रेडी कर रहे। लेकिन सब कुछ रेडी करने के बाद हाथ में क्या दिया? झाड़ू। वो नहीं भूलना चाहिए। हमारा क्या है कि श्रृंगार तक ही रह गए, बाद में हाथ में झाड़ू लेना भूल जाते हैं। तो श्रृंगार करने में गलत नहीं, लेकिन करने के बाद क्या करना है? भगवान की सेवा। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए भगवान की सेवा करने के लिए। भीतर मंदिर ऊपर सकल माझिला, सिंहासन माझे पुना स्थापना करिला। अब यहाँ से शुरू होता है बहुत सारे श्लोक जहाँ पे बताएंगे कि सिंहासन कैसे साफ किया, फ्लोर कैसे साफ किया, ऊपर का रूफ कैसे साफ किया, जब कोने कोने में जहाँ जहाँ कचरा था कैसे साफ किया। कंटिन्यूसली वही श्लोक चलते रहेंगे। प्रेमो प्रेमोलिया से सोधे ना जाए ना कृष्ण नामा, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। बहुत सुंदर श्लोक, समझने वाला। कैसा है ये पूरा एटमॉस्फियर? हर एक पर्सन बिजी है, कोई ऊपर साफ कर रहा है, कोई नीचे साफ कर रहा है, कोई यहाँ साफ कर रहा है, लेकिन साफ करते करते क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कृष्ण बोली, सबके मुंह में क्या है? हरी हरी कृष्ण कृष्ण, हरी हरी कृष्ण कृष्ण। कितनी इंपॉर्टेंट बात। हम लोग सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हम लोग का चिट चैट चलता है। तुम कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई? तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने कहाँ से खरीदा? तुमने खाना खाया? मैंने नहीं खाया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है सेवा का मूड। सेवा करते करते भी मुंह में एक बात, हरी हरी कृष्ण। यहाँ पे कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। कोई एक किसी को मटका देता है, कोई किसी को झाड़ू देता है, तो कृष्ण कृष्ण हरी हरी, कृष्ण कृष्ण हरी हरी, बस यही बोलते बोलते एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। कितनी समझने वाली बात। हमें भी नेक्स्ट टाइम से जब हम मंदिर में सेवा करें तो इस बात को मन में याद रखना चाहिए। सेवा मतलब सिर्फ भगवान का नाम, सही मूड में। जब भगवान के लिए फूल बनाते हो, या भगवान के लिए मंदिर परिष्कार करते हो, या खाना बनाते हो, या कुछ भी, या भगवान के पूजा के बर्तन भी क्लीन करते हो, मुंह में क्या होना चाहिए? कृष्ण कृष्ण हरी हरी, और कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबरा जानता ना भो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इतनी छोटी फॉन्ट है। सबार जानता न भोजा एकत्र करीला, सब होते प्रभुर भोजा अधिक होइला। बहुत सुंदर बात बोल रहे कि जब कचरे निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मंदिर साफ करते करते कचरा को लेके बाहर में रख दे रहे हैं। तो बाहर में रखते जा रहे तो कचरा का जो ढेर है वो बड़ा होता जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को देख के दूसरे भक्त भी वही कर रहे हैं, कचरा ले रहे और बाहर रख रहे, कचरा ले रहे और बाहर रख रहे। लेकिन पूरे भक्त ने मिलके जितना कचरा निकाला, चैतन्य महाप्रभु अकेले का ढेर उससे भी बड़ा है। उसका मतलब कितना सिंसियरली एकदम महाप्रभु कर रहे, एकदम सिंसियरली कर रहे हैं। सारे भक्त देख के आश्चर्य कि हम भी कर रहे इतने लोग, लेकिन इतना इतना कचरा निकल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जब निकाल रहे इतना ज्यादा कचरा निकल रहा है। ये भी एक बहुत सुंदर समझने वाली बात है कि सेवा बोला है ना इसलिए करना है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर होना चाहिए सेवा, जब बोला है मतलब एकदम इंटेंसिटी, उसका जो मूड होना चाहिए, करेंगे तो एकदम परफेक्टली करना चाहिए, मन देके। फिर सेवा हाफ हार्टेड नहीं करना चाहिए। बोला है करा है, दिखाई तो दे रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, हाथ तो चला रहा हूं, ऐसा नहीं। चलना चाहिए एकदम हार्ट, मूड बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हमारे जैसे भी कुछ लोग होते होंगे उसमें, कि थोड़ा थोड़ा सा कर रहे, थोड़ा थोड़ा बैठ जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा बैठ जा रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उन्हें डांट रहे हैं। कैसे डांट रहे देखिए। भल कर्म देखी तारे करे प्रशंसना, मने ना मिलीले करे पवित्र भर्सना। जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रेस कर रहे हैं, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो बुरा कर रहे हैं, तुम्ही भालो करियाच सिखा कन्य रे मात भालो कर्मा से हे यो न करे। जो अच्छा से नहीं कर रहा है ना, उसके पास में जाके महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे वाह तुम कितना अच्छा कर रहे हो, तुम दूसरों को सिखाओ ना, तुम जैसे कर रहे हो वैसे वो लोग भी करेंगे, थोड़ा सा सिखाओ ना। फिर ये लोग को इतना शर्म आ रहा है कि हाँ हाँ नहीं नहीं अभी अभी नहीं नहीं तुम सिखाओ, दूसरों को सिखाओ कैसे करना चाहिए। एको था शून्य सभी संकुचित होनो भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। जैसे ये बात सुना शर्म के मारे सबका मुंह एकदम सब उठ गया, एकदम स्पिरिट में कर रहे नहीं नहीं तुम दूसरों को सिखाओ तुम कैसा कर रहे हो। उसके बाद में सब वैष्णव लन या बे दुई बार शोधिला देखी महाप्रभुर मने संतोष होइला। एक बार पूरा मंदिर साफ हो गया, अब महाप्रभु देखा कि सब कुछ साफ हो गया, अब चैतन्य महाप्रभु बोले अब चलो सेकेंड टाइम। अभी बड़ा बड़ा जो दिखाई दे रहा था वो तो साफ हो गया, अभी जो एकदम अंदर अंदर में भी जो थोड़ा थोड़ा दाग वाग हो जाता है चलो अभी उसको भी साफ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला का इस चैप्टर का उन्होंने कमेंट्री दिया था, तब उन्होंने एक बहुत ही रहस्य की बात बताई। उन्होंने कहा कि गुंडीचा मार्जन करना माने हमारा हृदय मार्जन करना। ये जो हमारे हृदय में कितना कुछ है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, इतना कचरा है कि यहाँ पे भगवान को बैठने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ये गुंडीचा मार्जन करने के द्वारा हमें ऐसा सिखाना चाह रहे हैं कि देखो अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे तो पहले तुमको सफाई करनी पड़ेगी। जिस तरह से गुंडीचा मंदिर में भी भगवान को बिठाने के लिए क्या करना पड़ा, पहले सफाई करनी पड़ी ना, तब जाके भगवान वहां आके बैठेंगे। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे तो तुम्हारे हृदय को तुम साफ करो, परिष्कार कर दो, तुम्हारे हृदय को तुम क्लीन कर दो। बहुत सुंदर बात। आज सुबह मैं वैशिष्य का प्रभु का प्रवचन सुन रही थी और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात बोली जो मेरे मन को काफ़ी छू गई। वो बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तो जब भी हम फैमिली वेकेशन में जाते थे तो हमारे पिताजी बोलते थे कि पूरा घर अच्छा से साफ करके फिर जाएंगे वेकेशन में। तो मैं छोटा था तो मैं पूछता था कि क्यों साफ करने के बाद जाए, ऐसे भी तो हम चले जा रहे वेकेशन में तो आने के बाद भी तो साफ कर सकते हैं, कोई तो यूज करने वाला है नहीं, फिर भी आप बोलते हो पूरा साफ करके जाने के लिए। तो उनके पिताजी ने बोला कि अगर हम साफ करके जाएंगे तो जब हम थक के घर वापस लौटेंगे तब पूरा घर साफ सुथरा होगा, हम अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। तो इसी बात पे उन्होंने एक क्या है उस पर एक रिफ्लेक्शन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि उसी तरह से ये जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमारी ये जो आत्मा है, ये आत्मा के ऊपर में सारे गुण है, काम क्रोध मोह मत्सर्य। अब शरीर तो हम यहाँ छोड़ देंगे, जब हमारी मृत्यु होगी हम शरीर तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आत्मा तो हमारे साथ ही घूमेगी हम जो भी शरीर में जाते हैं। और ये जो आत्मा के जो ये सारे अवगुण अपना लिए है, अहंकार का क्रोध का ये जो बुरे गुण है, वो हमारे साथ दूसरे शरीर में भी जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये शरीर छोड़ने के पहले ही हमारे जो बुरे बुरे गुण हम अपना चुके उसको यहीं साफ कर दे। तो जब हम साफ करने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे तो सब कुछ साफ सुथरा होगा, हमें दूसरे जन्म में कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूर्व का कोई कैरी फॉरवर्ड डर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो फिर नेक्स्ट लाइफ भी आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हम देखते हैं ना कुछ लोगों को इतना क्रूर स्वभाव, हम सोचते हैं अरे इंसान ऐसा क्यों है, इतना गुस्सा वाला, इतना क्रूर, इतना भक्ति करता है फिर भी क्रूर। उसकी गलती नहीं है, पूर्व का है, पूर्व का लेके आया हुआ है सामान, क्या करेगा बेचारा। तो हम भी क्या चाहते हैं ऐसा शुरू करें, हम नहीं चाहते ना। तो इसीलिए क्या करना है, जब ये शरीर छोड़ेंगे उसके पहले ही सफाई करके जाएंगे। तो जब नए शरीर में जाएंगे तो शुद्ध शरीर, अच्छा, अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव, अच्छी तरह से हम शुरू करेंगे। कितनी सुंदर बात कही, मुझे तो इतनी मन में छू गई कि कितना इंपॉर्टेंट है इसी लाइफ में काम खत्म करना है, इसी लाइफ में जहां जहां गलती हम करते हैं, जहां जहां हमारे अवगुण है, सबको निकाल के फेंकना है, क्लीन स्लेट से जाना है हमें नेक्स्ट शरीर में। बहुत सुंदर बात कही। तो यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु दूसरी दफा सफाई करवा रहे, कितना इंपॉर्टेंट। एक्चुअली भक्ति जीवन में भी बड़ी बड़ी सफाई तो बहुत आसानी से हो जाती है, बड़ी बड़ी सफाई तो हो गई हमारे जीवन में भी। आप में से कोई है यहाँ पे जो मांसाहार करता है, कोई है शराब पीता है, कोई है ड्रग्स लेते हैं, अभद्र स्त्री संग करते हैं, जुआ खाते है, कोई है नहीं है। उसका मतलब पहली सफाई तो हो गई, मिनिमम सफाई, बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े तो आप लोग साफ करके बाहर फेंक दिया। अब बारीकी की सफाई, जहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे अवगुण है ना, छोटे छोटे हमारे प्रॉब्लम, दूसरों में दोष देखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। मुझे तो ऐसा लगता है भक्ति जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, अहंकार, दूसरों में दोष देखना, दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश कर, ये जो छोटे छोटे आई एम ऑलवेज राइट, और जो भी हमारे जीवन में हो, सुख हो या दुख हो, जो भी प्रसंग हो, उसको बार बार दोहराना, अपने मन में उसका वेट लेके घूमना, सही है ना। हमारी बातें अगर आप एक बार देखो, हमारी बातें क्या होती है पूरा दिन, आप एक बार देखो 24 घंटे में, मुझे लिख के बताओ आपकी बात क्या होगी। या तो पूर्व की कोई बात करोगे, इसने ऐसा किया था, उसके फैमिली में ऐसा हुआ था, इसने ऐसा, या तो फ्यूचर की बात करोगे, हम आगे चल के ऐसा करेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, हम तो ऐसा करेंगे। प्रेजेंट में तो कोई है ही नहीं, पूर्व की कोई दुखद घटना या तो कोई सुखद घटना, यही है ना हमारा जीवन। कोई ना कोई बात, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे, मैं कभी नहीं भूल सकता, इसने मेरे साथ ऐसा बात, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला था, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा था। और कंप्लेंट्स, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मेरा बात नहीं सुनता, मुझको इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। सच कहे तो हमारे साथ अगर कोई 10 मिनट इंसान बात करे ना, तो बंदा डिप्रेशन में चला जाए। हम लोग जो घूमती फिरती शोक सभा है, सब समय शोक में ही है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ इसने प्रॉब्लम किया, मेरे साथ इसने प्रॉब्लम किया, हमेशा दुखी जीव। और प्रॉब्लम ये है, हमें हमेशा लगता है कि दूसरा जीव हमें दुख दे रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरा जीव ने आपको दुख दिया, ठीक है हमने मान लिया। अब उस जीव ने आपको दुख दिया एक बार, लेकिन आप उस इंसिडेंट को याद करोगे 7 बार, उसका मतलब 7 बार दुख आपको किसने दिया, आपने, आपने। वो इंसान तो एक ही बार दुख दिया था आपको, कुछ कटु वचन बोल दिया था, आप उसको 7 बार याद कर चुके कल से, अब 7 बार आपने अपने आपको दुख दिया, उसने तो दुख नहीं दिया। ये हमारा प्रॉब्लम है, दुख हो तो उसको भी हम भूलेंगे, सुख हो तो भी नहीं भूलेंगे। 10 बार वहां गए थे, वहां की आइसक्रीम तो एकदम सुपर, क्या टेस्टी था, अरे भाई रात गई बात गई, तुमने खाया, तुमको आइसक्रीम अच्छा लगा, खत्म करो बात, आगे भगवान से, भगवान के बारे में कैसे सोचोगे, तुम्हारा माइंड कितना क्राउडेड हो गया है, कभी ये कभी वो कभी हो, या तो दुख के प्रसंग या तो सुख के प्रसंग, भगवान के लिए तुम जगह ही नहीं छोड़ते हो, सुख हो या दुख हो उसको वहां का वहां खत्म करो, अच्छा लगा सुख हुआ खत्म हो गया, बुरा लगा दुख था खत्म हो गया, अब आगे भगवान का नाम लो, समय नष्ट क्यों करते हो। ये सारी छोटी छोटी बातें जो भक्ति जीवन की है ना, ओवर क्राउडेड हो जाता है हमारा माइंड, कंप्लेंस, ये प्रॉब्लम हमें, वो प्रॉब्लम। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसको कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ से, किसी ने हाथ नहीं उठाया, कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई कंप्लेन। मुझे अक्सर भक्त लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, माता जी आप खुश कैसे रह पाती है, हमेशा हंसती हुई कैसे रह पाती है, दुख तो आपको भी पड़ता होगा कोई ना कोई, पर परिपूर्ण तो कोई नहीं है ना, कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना होता होगा, प्रॉब्लम तो होता ही है, फिर भी आप कभी दिखाते नहीं है, आपको कभी भी लगता नहीं आपको देखने से कि प्रॉब्लम है, हमेशा खुश रहती है, हंसते रहते है, कैसे हो सकता है। मैं आज उसका रहस्य बताऊं, कितने लोग सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, बताओ रहस्य क्या है, कैसे खुश रह सकते हैं। मैं ना बचपन में बहुत ज्यादा अंताक्षरी खेलती थी, हाँ यही है, बचपन में बहुत ज्यादा अंताक्षरी खेलती थी। किसी ने खेली है कभी अंताक्षरी, आपको जानते हैं अंताक्षरी कैसे खेलते हैं, आप एक गाना गाओ, गाना गाने के बाद में जो लास्ट वर्ड या लेटर आएगा फिर वो दूसरे पर्सन को दो, फिर वो उससे गाना गाएगा, ऐसे ही खेलते हैं ना। मेरा एक क्वेश्चन है, आप जब अंताक्षरी खेलते हो, आपको समझ लो शब्द या लेटर आ गया ब, क्या आप कंप्लेन करते हो कि मेरे को ब नहीं चाहिए, मेरे को ल ही चाहिए, मैं तो ल से ही गाऊंगी? कोई कंप्लेन करता है? नहीं ना, ब से गाते हो ना। वैसा ही जीवन है, जो आया उसी से गाओ और एंजॉय करो। नहीं मेरे को ब नहीं चाहिए, मेरे को ल ही चाहिए, बोलने से नहीं होगा। ये गेम अंताक्षरी का है, तुमको अभी ब आया है, तुमको ब से गाना है, कल ल आएगा तो ल से गा लेना, आज जो आया उसको वैसे गाओ। सी प्रॉब्लम ये हो गया कि हमको इतनी सारी चॉइस चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा हो ना तो ही मेरा लाइफ अच्छा है, ये हमारा प्रॉब्लम। सी पुराने जमाने में डीवीडी प्लेयर नहीं होते थे, सिर्फ रेडियो होता था, तो गाने की कोई चॉइस ही नहीं होती थी। अगर 1972 का गाना आए तो उसको सुन के आनंद ले लो, अगर 1999 का कोई लेटेस्ट बॉलीवुड आए तो उसको सुन के आनंद ले लो। आपके पास में चॉइस नहीं था कि मुझे ये गाना नहीं, मुझे वो गाना चाहिए, डीजे वाले बाबू आरजे बाबू मेरा गाना सुना दो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई चॉइस ही नहीं था। ये तो मैं गाना सुन सुन के पक चुकी हूँ, ऐसा कोई चॉइस ही नहीं था। जो गाना आता है उसको गाओ, उसको सुनो और आनंद करो। प्रॉब्लम कब से आया हमारे लाइफ में? जब से डीवीडी प्लेयर आया। जैसे ही सीडी प्लेयर आ गया गाड़ियों में, वैसे ही प्रॉब्लम। माँ बोलेगी ये 72 का कोई पुराना गाना लगाओ, पिताजी बोलेंगे नहीं नहीं भक्ति का कोई भजन लगाओ, बच्चे बोलेंगे नहीं 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 भजन नहीं होगा, बॉलीवुड का हिट लगाओ। अब करते 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 आप जहाँ जाना चाह रहे थे वो जगह तो पहुँच गए, गाना तो सुना ही नहीं। होता है ऐसा आप लोग के साथ? होता है, होता है ना। फाइटिंग फाइटिंग में ही टाइम चला गया और पहुँच भी गए जहाँ हम जाना चाह रहे थे, गाना सुना ही नहीं। लेकिन पहले क्या थे? चॉइसलेस, जो गाना आया उसी में आनंद। हमारी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए, एकदम चॉइसलेस, जो मिला उसी में आनंद। इतनी ज्यादा उसकी ये नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मन घड़ित पूरा महल बना चुके हैं, ये इंसान मुझसे ऐसे ही बात करना चाहिए, ये मुझसे ऐसे ही बोलना चाहिए। अरे क्यों बोले भाई, तुम कहाँ के महाराजा हो? तुम कोई डायरेक्टर हो कि तुम स्क्रिप्ट लिखोगे? तुम क्यों लिखोगे भैया दूसरों की स्क्रिप्ट? तुम मुझे ऐसे ही बात करो, मैं ऐसा बोलूंगी तो तुम्हें ऐसा ही रिएक्ट करना है। तुम किसी और का स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, तुम अपना स्क्रिप्ट लिखो। तुम क्या बोलोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, दूसरों का स्क्रिप्ट तुम मत लिखो। हमारा आधा से ज्यादा जीवन दूसरों का स्क्रिप्ट लिखने में चला जाता है। उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था ना, ऐसा कैसे बात किया मेरे साथ में, ऐसा कैसे बोल दिया। अरे उसकी मर्जी, उसका शरीर, उसकी जबान, वो जो इच्छा बोले, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं लेकिन मेरे बारे में बोल रहा है ना। अरे तुम्हारे बारे में उसकी जबान से बोल रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने सबको लाइसेंस दे दिया है, सबको लाइसेंस दे के रखा है कि यू कैन हर्ट मी, यू कैन हर्ट मी, यू कैन हर्ट मी। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गुंडीचा मार्जन के साथ साथ ये आप अपने बॉडी से, अपने हार्ट से क्लियर कर दो, ये लाइसेंस रिवोक कर दो। नो बडी कैन हर्ट यू, वाई एनी बडी कैन हर्ट यू? तुम अपने खुद के मालिक हो, तुमको कैसे कोई हर्ट कर सकता है? तुम्हारे साथ क्या कंसर्न है कोई क्या बोलता है? तुम ठीक से बोलो, तुमको जो बोलना है तुम्हारी स्क्रिप्ट तुम खुद लिखो। तो ये है, हमें चॉइसलेस बनना है, तभी हम आनंद से। सी प्रॉब्लम ये है कि हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन परिस्थिति तो नहीं बदलेगी, क्योंकि परिस्थिति तो पूर्व कर्म से बन के आई है, अब नहीं चेंज कर सकते। पूर्व जन्म में तुमने बना दी है तुम्हारी परिस्थिति, अब सिर्फ तुमको रिएक्शन देना है। तुम्हारा जो बनाना था पूर्व जन्म में तुमने कर्म बना दिया है। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तुम्हारे साथ में व्यवहार करते हैं। जीव गोस्वामी ने क्या बोला, ऑल द गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फोर्स टू बिहेव बैडली विथ मी बिकॉज ऑफ माई कर्म। ये दुनिया के सारे अच्छे लोग, उनको फोर्स किया जा रहा है मेरे साथ बुरी तरह व्यवहार करने के लिए, क्योंकि मेरा पूर्व कर्म ऐसा है। समझ में आई बात? एक बच्चा अपने पिताजी को जाके बोलता है कि ये लो आपका रिपोर्ट कार्ड। पिताजी ने खोल के देखा, ये तो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, बच्चा तो फेल हो गया। पिताजी को गुस्सा आया, बच्चा को एक जोर से थप्पड़ मारा, बोला तेरा रिपोर्ट कार्ड, तू फेल हो गया। मुझे आके बोलता है मेरा रिपोर्ट कार्ड, तू शर्म नहीं आई? बच्चा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला मेरे जैसा बेटा आपको पैदा हुआ, ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है। आपके पूर्व जन्म के कर्म का रिपोर्ट कार्ड है कि मेरे जैसा बेटा आपको पैदा हुआ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे आसपास के जितने लोग भी हमें सुख या दुख देते हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म के रिपोर्ट कार्ड है। कोई हमें सुख देता है तो हमने अच्छे मार्क्स कुछ अच्छा लिखा होगा, एग्जाम तो अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। कोई हमारे साथ बुरी तरह से व्यवहार कर रहा है तो हमने बुरा एग्जाम लिखा होगा। लोग हमें दुख नहीं देते, ये बहुत गलत धारणा है। ये हमें दुख देता है, वो हमें डांट रहा है, ये हमसे क्रोध हो रहा है। कोई कुछ नहीं करता, सब बहुत अच्छे हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ये चीज जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी ना, मेरा तो एक ही मंत्र है, मेरे घर में, मेरे रूम में, हर जगह मैंने एक चीज लिखी हुई है, माई कर्मा माई फॉल्ट। कुछ भी गलत हो, मेरा कर्म मेरी गलती, इसी में किसी की गलती नहीं। और एक बार ये मंत्र आपके जीवन में आप दोगे ना, आपको कभी दुखी नहीं लगेगा, कोई बात का दुख नहीं लगेगा। आप हमेशा आनंद से मुस्कुराते हुए जी पाओगे। पर हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं मैं इसके वजह से दुखी हूँ, मैं उसके वजह से दुखी हूँ, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। आई बात? तो यहाँ पे हम यहाँ थे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि सेकेंड टाइम आपको बहुत अच्छा से सेकेंड टाइम इसको क्लीन करना है। तो अब जब सेकेंड टाइम क्लीन माने छोटी छोटी बातें, भक्ति जीवन में भी अगर हम हमारा मंदिर मार्जन करना चाहते हैं, हमारे हृदय का मंदिर मार्जन करना चाहते हैं, भगवान को हमारे हृदय में बिठाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये छोटी छोटी बातें हमारे हृदय से क्लीन करनी पड़ेगी। आगे मैं बोलना तो चाह रही थी लेकिन लेट हो रहा है, इसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये सब मार्जन हो गया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब पानी लेके आओ। तो अब सब पानी लेके आए, 100 घड़े पानी लेके आए और सब फटाफट से उधर पानी डालने लगे। और जैसे ही पानी डाला, पहले तो क्या था, एकदम रफ एंड ड्राई था ना सब, वहां से सैंड एंड स्ट्रॉ एंड डस्ट सब हटा दिया था। और अब जब पानी डाला तो एकदम वहां पे ठंडक हो गई। सी हमारे भक्ति जीवन में भी सबसे पहले तो हमें कचरा हटाना है, माने ये सारी ये छोटी छोटी बातें, ये ग्रॉस कचरे हैं, कुछ बड़े बड़े पत्थर, कुछ सटल कचरे हैं, माने छोटी छोटी बातें, हमारा छोटा छोटा सा अहंकार या हमारी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये छोटी छोटी बातें हटानी। अब सब कुछ हटाने के बाद क्या करना है, ठंडा ठंडा पानी डालना है। क्या है वो ठंडा ठंडा पानी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। बस फिर क्या होगा, महा क्लीनिंग। पहले सब गलत हैबिट्स निकाल दी, उसके बाद में हमने गलत विचार भी बाहर फेंक दिए, उसके बाद में महामंत्र का पानी, तो एकदम पूरा पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में बोलते हैं, निज वस्त्रे कोयला प्रभु गृह समर्जना, महाप्रभु निज वस्त्रे मैला सिंहासन माझीला सिंहासन। बोल रहे हैं कि पहले तो पानी से धो दिया, अभी द फाइनल टच क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, अपना खुद का कपड़ा निकाल के उससे घसना शुरू किया सिंहासन को, एकदम पॉलिश कर रहे। कितनी सुंदर बात, हम तो हमेशा इतना कॉन्शियस रहते हैं, अपना कपड़ा से मंदिर क्लीन करना तो दूर की बात है, मंदिर क्लीन करने के लिए आएंगे तो भी पुराना कपड़ा पहन के आएंगे, कहीं खराब ना हो जाए, सो मच कॉन्शियस हम लोग होते हैं। और फिर कहाँ बैठे, कहीं कचरा तो नहीं लग गया, गंदा तो नहीं लग गया। यहाँ पे सिखा रहे कैसे होना चाहिए मंदिर मार्जन, अपना वस्त्र खुद निकाल के क्या कर रहे, मार्जन करना शुरू कर रहे। कितनी सुंदर बात है। और क्या कर रहे, एक एक कोना कोना देख रहे, उसको जोर जोर से घिस रहे हैं। कितना सुंदर, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए मंदिर मार्जन। वो हम जो कार्तिक मास में सबको मैं ड्यूटी देती हूँ ना, फटाफट फटाफट वो 4:30 कब बज गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, एक ऐसा क्लीनिंग नहीं। मंदिर मार्जन माने इतना आनंद से करना चाहिए, अगर आपको मंदिर मार्जन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा भागता भागता हुआ 3:30-4 बजे नहीं आना चाहिए, 2 बजे आ जाना चाहिए, धीरे धीरे करके करके पूरा मंदिर। यही वो स्थान है जहाँ इतने सारे भक्त अपने पैर दे के चलते हैं, इतने सारे भक्तों की धूली है, भगवान खुद यहाँ राधा रानी के साथ चलते हैं, इतने संत, इतने सारे सत्पुरुष, इतने भक्त यहाँ पे चलते हैं। एक एक जगह को प्यार से साफ करना चाहिए। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक क्लास में बहुत सुंदर बात बोले, उन्होंने कहा लव मीन्स लव मीन्स अटेंशन इन डिटेल. प्यार मतलब इन डिटेल आप उस चीज को करते हो, उसका मतलब आपका प्यार आप व्यक्त कर रहे हो सही मायने में. समझ में आया? किसी चीज को ऐसे ही कर देना और किसी चीज को माइन्यूटली करना, मतलब दिस इज अ वे टू शो योर लव, आपका प्यार दिखाना. तो सेवा में भी जब आप माइन्यूट डिटेल्स भी आपके माइंड में है, मतलब आप सेवा में कितने ज्यादा सिंसियर हो. आज हमारे अनुराधा माता जी को देख के मुझे एक बात याद आई. हम गए थे भेट द्वारका, तो भेट द्वारका तो स्टीमर में जाना होता है, तो हम स्टीमर में बैठे थे, तो हम थे 40 जने थे हम लोग, और बहुत सारे थे उस शिप में, मेरे ख्याल से 100-200 लोग होंगे. तो हम लोग सब जा रहे थे, तो मैं बैठी थी और हमारे अनुराधा माता जी खड़ी थी. तो कभी यहाँ खड़ी रह रही है तो कभी वहाँ खड़ी रह रही है, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे घूम रही है. तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है कि ये ऐसा क्यों घूम रही है, मतलब एक जगह सीधा से खड़ी रह सकती है ना. 2 मिनट के बाद मुझे भी लगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, पहले यहाँ खड़ी थी उसके बाद में फिर यहाँ क्यों. मैंने बोला नहीं, टोकना क्यों, मेरे से उम्र में भी ज़्यादा है, मैं कुछ बोला नहीं. फिर 2-5 मिनट मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है. तो बाद में मुझे समझ में आया कि मैं जहाँ बैठ रही थी वहाँ सूरज की रोशनी गिर रही थी, तो वो सही उसी जगह पे खड़ी है जहाँ से मुझे सूरज की रोशनी मेरे पे ना गिरे. मैं इतनी सरप्राइज हो गई, 5 मिनट के बाद मुझे वो बात रजिस्टर हुई कि ये ऐसे मंकी के जैसे जंपिंग क्यों कर रही है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ. नहीं, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो छोटी छोटी डिटेल शायद उस पर्सन को समझ में भी ना आए कि आप क्या कर रहे हो, बट आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन थोड़ा बहुत भी इनकन्वीनियंट ना हो, आप कुछ भी करोगे उसके लिए कि वो कन्वीनियंट है कि नहीं. तो इसमें वो कोई दिखाने की मुझे कोशिश नहीं कर रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो तो ये डिटेल तो आ ही जाता है. तो जब हम भगवान से अटैच हो जाते हैं तो हर एक सेवा में डिटेल आ जाएगा. अगर सेवा डिटेल से नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं तो अटैचमेंट अभी नहीं शुरू हुआ है. आप और भगवान के बीच में अगर वो रिश्ता बन चुका है, आपको वो अटैचमेंट आ गया है ना, तो हर सेवा में वो आ ही जाएगा. कोई आपको सिखाएगा नहीं, किसी ने उसको बोला नहीं आपको ऐसा करना है, अपने आप से वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर से उसको क्लीनिंग कर रहे हैं. उसके बाद सबार जायंताना भोजा एकत्र करीला, सबा होते प्रभुरा भोजा अधिक होइला. ये तो हम लोग कर चुके हैं. उसके बाद में जल भरे घर धोया, करी हरि ध्वनि कृष्ण हरि ध्वनि विनार नहीं सुनी. बस अब हरि हरि कृष्ण कृष्ण की ध्वनि कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं. अब क्या हुआ, जब सारा पानी उसमें डाल दिया, पूरा साफ हो गया, तो जहाँ जहाँ पे वो होल ब्लॉक किया हुआ था ना, जो पानी बाहर ना जाए, उसको चैतन्य महाप्रभु ने खोल दिया. जैसे खोल दिया तो सारा पानी एकदम फ्लड जैसे बाहर रास्ते पे गिर गया, और बाहर की जो सारे रास्ते थे वो भी सारे नीट एंड क्लीन एंड सब साफ हो गए. उसके बाद में यहाँ पे एक भक्त बहुत बदमाशी करता है. चैतन्य महाप्रभु जब साफ कर रहे हैं तो उनका ध्यान साफ सफाई में है, वो देख नहीं रहे पीछे क्या हो रहा है. तो एक भक्त क्या करता है, चैतन्य महाप्रभु के दोनों पाद पद्म पे पानी डालना शुरू करता है, और बाकी के 4-5 भक्त क्या करते हैं, वो पानी उनके चरण पे जाता है और वो लोग पीते हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरों को पास कर रहे हैं, और सबको बहुत मजा आ रहा है. लेकिन एक भक्त ऐसा करता हुआ पकड़ा गया कि लास्ट में जब ऑलमोस्ट ऑल क्लीन हो गया था, तब एक भक्त क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उनके पैरों में पानी डाल रहा है और पी रहा है. तब चैतन्य महाप्रभु एकदम गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर इस भक्त को नहीं डांटे, सीधा सर्वभौम भट्टाचार्य को बुलाए. बोला, ये देखो तुम्हारा भक्त क्या कर रहा है, ये देखो, ये ऐसा कोई करता है, मंदिर के अंदर में मेरे पैर धो के पानी पी रहा है. और फिर सर्वभौम भट्टाचार्य भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एक्टिंग कर, एक्चुअली खुशी की बात है, भगवान का चरणामृत पी रहे हैं, तो वो भी ऐसे एक्टिंग करके वो वैष्णव को ऐसे गला से पकड़ के, ऐ तुम क्या कर रहे हो, चलो निकलो बाहर आओ, तुम यहाँ सेवा नहीं कर सकते, तुम बाहर जाओ, वैसे करके उसको बाहर में रख के आके फिर अंदर आके बोलते हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिए, वो बहुत भोला है, उसको कुछ पता नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को भी अच्छा ही लग रहा है क्योंकि वो लोग भक्ति कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक राइट एटिकेट बता रहे हैं कि मंदिर के अंदर में किसी और का चरण नहीं धोना चाहिए, ये आपको बता रहे हैं. तो उसके बाद में यहाँ पे पूरा क्लीनिंग हो जाता है, हमको इसको एंड करना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत ही सुंदर है, आप घर जाके इसको पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगी, क्या होता है उसके बाद में जब पूरा क्लीनिंग हो जाता है तो इस्कॉन का सिस्टम क्या है, क्लीनिंग के बाद क्या होगा, सेवा के बाद प्रसाद, सेवा के बाद में फीस्टिंग होता है। तो फिर यहाँ पे फीस्टिंग होना शुरू होता है, और फीस्ट के टाइम पे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य बहुत सारे मजाक की बातें करते हैं, दोनों आर्ग्यू करते हैं। और यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब सेवा में थे चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सीरियस थे, एकदम कोई हंसे वसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब खा रहे तो बहुत सबके साथ जॉयफुली एकदम हंस रहे हैं। तो मतलब बता रहे कि कभी उनका रूप ऐसा होता है और कभी एकदम लाइट बन जाते हैं, सबके साथ में हंसते हुए बैठ के प्रसाद ले रहे, किसी को कुछ नहीं बोल रहे। और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि जितने लोगों ने वो मंदिर मार्जन की सेवा की उतने लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, इतना। और आलिंगन ही नहीं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे। और चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे, बोल रहे आप लोग सब कितने महान जीव, भगवान की मंदिर की सेवा की, आप लोग कितने महान भक्त हो। कितनी सुंदर बात। सी एज ए डिवोटीज हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर हमें भगवान का अनुग्रह चाहिए तो हमें क्या करना है, सेवा करना। आप अगर आप भागवतम का थर्ड कैंटो पढ़ो तो उसमें मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद आता है, तो उसमें मैत्रेय मुनि पूरा वैकुंठ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वैकुंठ कैसा है। तो उसमें वो बताते हैं कि वैकुंठ का जो मार्बल है उसमें कभी धूला मट्टी नहीं होती है, वो कभी खराब होता ही नहीं है। फिर भी वैकुंठ कैसा होता है, वहाँ पे कितने सारी लक्ष्मियाँ होती है ना, सठ सहस्र लक्ष्मी होती है वहाँ पे। ब्रह्म संहिता में हम लोग सुनते हैं ना, लक्ष्मी होती है माने लक्ष्मी देवी के एक्सपेंशंस, हजारों के तादाद में लक्ष्मी। और वो सब क्या करती है, झाड़ू करती है। अब हमें ये प्रश्न आएगा कि मैडम एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे कचरा नहीं है तो आप क्या झाड़ू दे रहे हो, कचरा तो है ही नहीं, मार्बल तो मैला होता नहीं, वहां तो कोई ट्रैफिक व्हीकल का ये भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, धूला मट्टी नहीं है, वहां तो कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है मंदिर का, धूल आ कहां से रही है, धूल है ही नहीं, फिर भी करते हैं। तो इन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी इस पर्पट में लिखते हैं, भैया क्यों करते हो, जब कचरा है ही नहीं तो साफ क्यों करते हैं ये लक्ष्मी देवी। तो बोलते हैं भगवान का विशेष अनुग्रह पाने के लिए करते हैं। उसका मतलब अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, मंदिर मार्जन करेंगे, तो क्या होगा, भगवान का विशेष अनुग्रह हमें मिलेगा। कितनी सुंदर बात ना। तो इसीलिए आने वाले संडे हम करेंगे गुंडीचा मार्जन, हम जो है मंदिर मार्जन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी भक्त सब बैठे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले संडे सुबह शार्प 9 बजे आ जाइए, और हम सब मिलके क्या करेंगे, मंदिर मार्जन, मंदिर को साफ करेंगे, मंदिर की हर एक कोने कोने को साफ करेंगे। इस मंदिर को साफ करके क्या मिलेगा हमें, भगवान का अनुग्रह। यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात लास्ट में बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक है, एक बात वो बताते हैं यहाँ पे, गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कहिला, देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति होइला। 222 श्लोक है, फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने ये गुंडीचा मार्जन की कथा बहुत संक्षेप में बताई है, ब्रीफ में बता दी है, लेकिन जो भी इस लीला को सुनेगा या देखेगा क्या होगा, पक्का वो कृष्ण भक्त हो जाएगा। कितना भी पापी हो वो क्या बन जाएगा, कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो एक गुंडीचा मार्जन एक फिजिकल बाहरी प्रोसेस ही नहीं है, बहुत ही अंदर गहरा प्रोसेस है। जब हम मंदिर साफ करते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय भी क्लीन हो जाता है, परिष्कार हो जाता है, और क्लीन हृदय में भगवान को बैठने की जगह बन जाती है। तो अगले रविवार सब गुंडीचा मार्जन के लिए आ जाइए, और उसके पहले भी एक फंक्शन है, वो है आने वाले थर्सडे गुरुवार को, क्या डेट है, 28 तारीख को, 28 तारीख को स्नान यात्रा है, सब लोग पक्का आइए। स्नान यात्रा के दिन हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जो है बाहर लेके आएंगे स्नान बेड़ी पे, और सारे भक्तों को अवकाश मिलेगा उनको नहलाने का, क्योंकि जगन्नाथ जी का जन्मदिन है 28 जून स्नान यात्रा का दिन, तो बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी है, उस तरह से जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है स्नान यात्रा का दिन। तो हम भगवान को अलग अलग द्रव्यों से स्नान कराएंगे। उसके बाद में एक विशेष वेश आपको भगवान का दिखेगा, हाथी वेश। आपको जगन्नाथ जी का दर्शन होगा हाथी जैसा। ज्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगी, उस दिन का कुछ उस दिन का ही रहस्य रहने दीजिए, आप आके उस दिन देखिए। थर्सडे इवनिंग 4 o'clock, 4 बजे, वर्किंग डे है इसलिए इवनिंग में रखा है। सब शाम को 4 बजे आइए, भगवान का स्नान होगा, उसके बाद में हाथी वेश में दर्शन होंगे और भगवान को हम 56 भोग भी ऑफर करेंगे। तो सब अपने अपने घरों से फ्रूट्स या स्वीट्स लेके आ सकते हैं, हम भगवान को ऑफर करेंगे और उसके बाद भगवान का दर्शन नहीं होगा 15 दिन के लिए। भगवान को क्या होता है, बुखार आ जाता है स्नान यात्रा के बाद, उनको ठंडी लग जाती है क्योंकि हम सब नहलाएंगे इतने लोग, तो 15 दिन तक उनका दर्शन नहीं होगा। फिर सीधा उनका दर्शन होगा रथ यात्रा के दिन। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, जो भी जगन्नाथ जी को देखना चाहता है गुरुवार के दिन पक्का आना है और उसके बाद फिर सीधा रथ यात्रा में। आज मैं यही खत्म करूंगी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्ण